نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. مصیبتوں سے کیسے نمٹے, اس ٹاپک میں سے جو ٹاپک ہم کر رہے ہیں وہ ہے مصیبتوں کے آنے سے پہلے کرنے والے کام. ابھی تک ہم نے دو کام دیکھ لیے, سب بولیے میرے ساتھ. پہلا کام جو مصیبتوں کو آنے سے روک سکتا ہے وہ کیا ہے؟ شکر گزار ہونا. ہم جتنا اللہ کا اور بندوں کا شکر ادا کرتے جائیں گے ہمیں ان کی طرف سے آنے والی تکلیفیں کم سے کم ہوتی جائیں گی. دوسری چیز ہم نے کیا پڑھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی. پھر اس میں ہم نے مثالیں دیکھی تھی, غزوہ احد کے موقع پہ ایک بہانہ بن گیا. پھر اسی طرح سے ہم نے بہت سارے اور واقعات دیکھے تھے کہ دائیں ہاتھ سے کھانے کا تکبر کے ساتھ انکار کر دیا تو پھر ان کا ہاتھ کبھی اٹھ نہیں سکا. پھر ایک مثال ہم نے دیکھی کہ احرام کو مسجد نبوی سے باندھنا چاہا جبکہ ذوالحلیفہ سے باندھنے کی بات تھی. تو اس طرح کی چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. اور ایک پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ذخیرہ اندوزی کرنا, یعنی مال کو اس نیت سے جمع کر دینا کہ بعد میں مہنگا ہوگا تو بیچیں گے. تو جب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا گیا تو پھر انہوں نے اس پہ جو ریئیکشن شو کیا اور اس کے بعد دیکھا گیا کہ وہ فالج کا شکار ہو گئے. اب میں اور آپ ججمنٹل نہ بنیں, یہ بھی یاد رکھیں. مجھے بہت ڈر لگتا ہے اس طرح کے عوامی ٹاپک پڑھاتے ہوئے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں تو پتہ چلے کہ ہم نے اپنے ساتھیوں کا جینا دوبھر کر دیا. ایک تو ان کی تیمارداری کرنی جائے اور ساتھ ایک فتویٰ بھی دے کے آ جائیں کہ آپ کو پتہ یہ آپ کے کسی گناہ کی سزا ہے. ایک چھوٹا سا اصول یاد کریں, اس کے بعد بک پہ چلتے ہیں. آپ کے اوپر تکلیف آئے تو سوچئے یہ میرے گناہوں کی سزا ہے. دوسرے کو تکلیف میں دیکھیں تو سوچئے کہ یہ اس کے درجوں کی بلندی ہے. پہلے دن سبق میں یہی پڑھا تھا نا, دو سبب ہے, یا درجوں کی بلندی ہوتی ہے یا گناہوں کی سزا. تو میرے پہ جو تکلیف آتی ہے نا, یہ میرے کسی گناہ کی سزا ہے. اور میرے کسی پیارے پہ آتی ہے تو یقیناً اس کا اللہ کے ہاں بڑا اعلیٰ مقام ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو مزید اعلیٰ مقام دینا چاہتے ہیں. بس یہی مسلم مینرز ہیں, یہی ایتھکس ہیں, یہی اخلاق ہے. جب ہمارا یہ اخلاق ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے کہ ہمارے تعلقات دوسروں سے بہت خوبصورت ہوں گے. تو آئیے تیسرا سبب آج ہم دیکھیں گے, اور وہ کیا ہے؟ دنیاوی سزاؤں کا موجب بننے والے گناہوں سے بچنا. یہاں ہم کافی زیادہ گناہوں کی لسٹ پڑھیں گے انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں, کہ کچھ گناہ ایسے ہیں, عام طور پہ تو ہر گناہ ہی, لیکن خاص طور پہ کچھ گناہوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہمیں ملتے ہیں, آپ کی احادیث ہیں کہ اس گناہ پہ یہ سزا. تو یہ بہت لمبا ٹاپک ہے, ہم اس کو گو تھرو کریں گے. کیونکہ اوور آل تو ہم نے دیکھ ہی لیا کہ گناہوں سے تکلیفیں آتی ہیں نبی کی نافرمانی سے, لیکن کچھ گناہوں پہ خاص طور پہ دنیا میں سزا ہے. یا نوٹ کیجئے گا, دنیاوی سزائیں, یہ نوٹ کریں, اس کو ہائی لائٹ کر کے لکھیں کہ عام طور پہ گناہوں کی آخرت میں سزا ملے گی, لیکن اس ٹاپک میں ہم وہ گناہ پڑھنے والے ہیں جن پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بھی سزا کی بات کی ہے. تو اس میں پہلی دلیل آپ کے سامنے جو ہے وہ سورۃ شورا کی آیت 30 ہے, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا بدلہ ہے, اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما لیتے ہیں. بات واضح. اگر اللہ ہمیں ہمارے ہر گناہ پہ پکڑے تو کیا ہو؟ قرآن میں اس کا بھی جواب موجود ہے. 12 پارے کی پہلی آیت کھول کے پڑھ لیجئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ولو یاخذ اللہ بالشر, بالکل شروع میں ہی ہے, 13 پارے کے ہوگی انشاءاللہ, کہ اگر اللہ لوگوں کو ان کے ہر گناہ پہ پکڑ لے تو تم زمین پر کسی چلتے پھرتے انسان کو نہ دیکھو. تو یاد رکھیے, اللہ ہمیں ہر گناہ پہ نہیں پکڑتے, بہت سارے تو چھوڑ ہی دیتے. پھر دوسری آیت سورۃ روم آیت 41 ہے, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. خشکی اور تری میں, خشکی اور تری سے کیا مراد ہے؟ لینڈ اینڈ سی, اوشن. اور میں جب بھی کبھی سمندروں کے اندر گلگپاڑا کرتا لوگوں کو دیکھوں, اور بڑے بڑے کروز ہیں اور بڑے بڑے شپ ہیں اور اس کے اندر نافرمانیاں لوگ کریں, تو مجھے ہمیشہ یہی یاد آتا ہے بات کہ انسانوں نے زمین کو تو گناہوں سے آلودہ کر ہی دیا, आप पानियों में भी जाके गुनाह करेंगे और फिजाओं में और हलाओं में भी गुनाह करने के इरादे पूरे मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इनकी बदअमालियों की वजह से फसाद फैल गया, ताकि वो इन्हें इनके पास करतूतों का मज़ा चखा दें, ताकि वो बाज आ जाए। ये जो लाल लम यरजीऊन है, इसमें हमने पीछे भी बात की थी कि अल्लाह सुबहाना ताला बाज़ दफ़ा इंसानों को उनके गुनाहों पे दुनिया में क्यों पकड़ते हैं, ताकि बाज आ जाए। सीधी सी बात है कि एक दफ़ा बच्चा चल रहा है और किसी जगह से गिरा, तो उसको नहीं चाहिए ना कि दोबारा वो काम करे। जिस रास्ते से आप फिसले, आप वो रास्ता छोड़ दें। तो लिखिए एक जुमला, यहाँ बुक में नहीं है लेकिन आपके काम का है, बास दफा दुनिया में हमें किसी गुनाह पे जो तकलीफ आती है, ये अल्लाह का हम पे रहम होता है, फजल होता है। क्यों? अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम बच जाए। आप रात को सूरह सजदा पढ़ के या सुन के जरूर सोते होंगे, उसमें अल्लाह सुबहाना ताला ने इस बात का तذکرہ किया है कि ली नुज़ीक़हुम, ताकि हम उनको चखाएं एक करीब का अजाब उस बड़े अजाब से पहले। तो बाज़ दफ़ा दुनिया में तकलीफ का आना अल्लाह की सजा नहीं, उसकी रहमत है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे बच्चा गलत काम करता है तो माँ उसको डांटती है। अब माँ की डांट क्या डांट होगी? माँ क्यों डांटती है? कि बच जाए, वरना क्या होगा? अगर वो नहीं रुकेगा, कल पुलिस पकड़ लेगी, पुलिस छोड़ेगी तो परसों को जेल में ले जाएगा। तो घर का बंदा समझाए और बंदा संभल जाए, तो ये अकलबंदी है कि फिर बात बाहर नहीं जाती। तो पहले तो यही दुआ किया करें हम सब कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे, रब्बना ला तो आखिज़ना इन नसीना। लेकिन अगर कोई पकड़ आती है दुनिया में, तो ये कहा करे कि अल्लाह इसको हमारी आखरत की निजात का जरिया बना दे। अब ये कौन सी पकड़ होती है? इमाम इब्ने कय्यम कहते हैं इसके बारे में दो बहुत ही खूबसूरत बातें की हैं, देखिएगा। कहते हैं गुनाहों की सजा में से एक ये है कि वो नेमतें खत्म कर देते हैं और अजाब को ले आते हैं। बंदे से कोई नेमत नहीं जाती मगर गुनाह की वजह से, और इस पर कोई अजाब नहीं आता मगर गुनाह की बिना पर। यानी आप देखिए, नेमतों की तासीर चली जाती है। आप देखिए, औलाद है, औलाद की खुशी कम है, माल है, लेकिन माल को पाकर इंसान का दिल मुतमिन नहीं है। नरम गरम घर मौजूद है, लेकिन घर में रहने वालों के दिलों में मोहब्बत नहीं, तो ये नेमतों की मिठास चली जाती है। जाहिर चीज़ें हैं, लग्जरियस लाइफ है, लेकिन खुशी नहीं है। आज आप देखिए कि लग्जरियस लाइफ के पीछे भागते भागते लोगों ने अपनी सेहतें बर्बाद कर दी, लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकी। फिर इसी तरह हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का एक कौल है, मा नज़ल बलाउ इल्ला बि ज़म्बिन वला रुफिया बलाउ इल्ला बि तौबतिन। इसको हाईलाइट करके याद करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत और आसान सी बात है। कोई मुसीबत गुनाह के बगैर नाजिल नहीं होती और कोई मुसीबत तौबा के बगैर उठाई नहीं जाती। क्या पता चला? जब हम अपने किसी गुनाह की पकड़ में आ जाते हैं, तो जब तक सच्चे दिल से तौबा नहीं करेंगे, वो मुसीबत नहीं जाएगी। बस अब आपने देखा है, डॉक्टरों पे आप जाते हैं, आप जो आपका अकीदा होता है उसके मुताबिक दम दरूद कराते हैं, झाड़ फूंक कराते हैं, दुआएं कराते हैं, हरम में जाते हैं, नहीं ठीक होता बंदा, या वो मुश्किल नहीं टलती। क्यों? तौबा का इंतजार होता है। छोड़ो इस गुनाह को, ये ऐसे ही है जैसे पेट में दर्द है, हकीम साहब के पास मरीज जाता है। अब मरीज बताता तो नहीं, लेकिन हकीम साहब को पता लग जाता है कुछ खाने में गड़बड़ की थी। क्या खाया था? कहता है कच्ची रोटी खा ली थी, या जली हुई रोटी खा ली थी, या मिर्चें खाता हूँ। अब मुझे बताइए कि सबसे पहले हकीम क्या कहेगा कि ये खाना छोड़ो। दवा खाए, फिर अगले दिन आए, फायदा हुआ नहीं, क्या हुआ? पहले से बढ़ गई। क्यों भाई, क्या वजह? दवा खा रहे हो, ठीक क्यों नहीं हो रही? ये बताओ कि वो रोटी तो नहीं अब दोबारा खाई? कहता वो तो साथ साथ खा रहा हूँ, कभी भी फायदा नहीं होगा। हमारे यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत जुमला बोला जाता है कि परहेज इलाज से या दवा से बेहतर है। तो ये परहेज करना लाजमी है, इसके बगैर अल्लाह ताला फिर बंदे को छोड़ते नहीं है। फिर इसी तरह सूरह शूरा की 30 ही में ये जो बात है कि वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफू अन कसीर, इसमें भी वही बात आ गई कि बहुत सारी तो माफ की हुई है, कुछ पे पकड़ा हुआ है। सूरत अनफाल आयत 53 में आता है, ज़ालिक बिअन्नल्लाह लम यकुन मुग़य्यिरन नेमतन अनअमहा अला क़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम। वो इसलिए कि बेशक अल्लाह ताला जो नेमत किसी गिरोह को अता फरमाते हैं, इसे फिर कभी नहीं बदलते जब तक कि वो लोग अपनी हालत ना बदल लें। याद रखिए, ये लिखिए जुमला, हम बाज़ोकात रोते धोते गिले शिकवे करते, दूसरों को कोसते, उसने ये नुकसान करा दिया, उसके मशवरे पे चल पड़े, उसने रास्ता दिखाया इस काम का, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन जिस चीज की तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती, वो अपनी हालत को ना बदलने की तरफ नहीं जाती। यहाँ तो ये सूरत अनफाल की आयत है ना, सूरत रात में भी ये रात, ये मेरा हाल है, या यूनस से रात में आयत आती है जिसको मौलाना हाली ने शायद कहा है ना कि इन अल्लाह ला युगैरु मा भी कौमिन हत्ता युगैरु मा भी अनफुसिहिम, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। आप इसको अपने इज्तमाई हालात पे भी लेके देखिए। हम कहते हैं पाकिस्तान में बहुत सारी मुसीबतें हैं, बिजली नहीं है, बारिशें बहुत हो गई, हर साल सैलाब आ जाते हैं, जलजले हैं और जो कुछ भी है। अब हम इसका शिकवा तो करते हैं, यानी हम अपने हालात के बिगाड़ का शिकवा करते हैं, लेकिन हम अपनी हालत नहीं बदलते। 1-2 साल पहले बहुत ही ज़्यादा ख़तरा था जंग का और न जाने क्या कुछ खबरें थी, इधर ही मेरा ख्याल है मैं लंदन थी, ये कान थी, तो इत्तेफाक हुआ पाकिस्तान जाने का। लोगों ने लिटरली मुझे रोका कि मत जाइए, ये कोई पाकिस्तान में जाने के दिन है, क्योंकि हर वक्त यही खबरें फैली हुई थी कि जंग लगने का खतरा है और पाकिस्तान इंडिया का आपस में चल रहा है मामला। खैर किस्सा मुख्तसर, जो भी होता है इंसान जाता है। जब मैं गई और वहाँ से एयरपोर्ट से लेकर एयरपोर्ट तक जो कुछ मैंने हालात देखे, जब मैं वापस आई तो मिलने वाले पूछते हैं सुनाइए क्या हाल था पाकिस्तान में और जो भी कैसे हालात है, तो मैंने एक ही जुमला बोला था कि हालात का तो मुझे नहीं पता लेकिन हालत बड़ी ख़राब है हम मुसलमानों की। एयरपोर्ट पे भी शायद वो किसी नई दुल्हन को लेने आए हुए थे और ऐसे लग रहा था कि किसी पिक्चर की मूवी बन रही है और फूल फेंक रहे हैं और कर रहे हैं, और मैंने खाते देखा, लोगों को पीते देखा, बाजारों को आबाद देखा, आधी आधी रात तक गुलबर्ग की गलियां जहां लोग खाने खाने जाते हैं वहां जाते हैं, म्यूजिक दम दड़ल्ला। मैंने कहा कोई हालात खराब नहीं है, हमारे हालात बहुत अच्छे हैं, हमारी हालत बिगड़ी हुई है। और याद रखिए ये बात आज लिख लें, 28 दिसंबर 2016 है, ये आप आज लिख लें अपने कागज़ में और इसको लिख के किसी जगह छुपा दें, फिर साल बाद पढ़ें, 2 साल बाद पढ़ें। याद रखिए हम मुसलमानों की हालत नहीं बदलेगी तो हमारे हालात नहीं बदलेंगे। बर्फ गिरती है बेचारे मुसलमानों पे, ये रुख बदलता रहता है थोड़े थोड़े दिन बाद, बदली कभी इधर बरसती है कभी उधर बरसती है, हालात ख़राब है। हम दुनिया में अल्लाह के नाम को बुलंद करने वाली एक ही कौम है दुनिया में आज, और वो मुसलमान है। और ऐसी कौम जो नाम तो ले ले, मसल आप देखिए ना, आप कहते हैं मुझे इस मस्जिद का सदर बना दीजिए, ले लीजिए, लेकिन काम नहीं करेंगे तो पकड़ तो आपकी होगी, दूसरों की तो नहीं होगी ना। इस वक्त मैंने आपने कुंतुम खैरा उम्मतिन का टाइटल लिया हुआ है लेकिन काम हमारे बदतरीन उम्मत वाले हो गए, ये इसके कोड़े बरस रहे हैं, ये अजाब के कोड़े हमारी हालत के सुधरने से होंगे। दुआ कीजिए हमारी हालत सुधरे। अब सवाल पैदा होता है कि हालत कहाँ सुधरनी है जी, कब कैसे होती है? मुझे तो ये बता, ये है कुरान की क्लास जहाँ दिलों के हाल बदलते हैं। आप बिलीव मी, मैं कहती हूँ कि इस 5-6 दिन के आने में अल्लाह आपको वो रास्ता सुझा दे। मैं रास्ते में साथियों की बातें सुनती हूँ जो आते हैं, कितना अच्छा लगता है सुबह में उठते हैं, कभी इस वक्त तो निकले ही नहीं थे, हमने तो कभी सूरज देखा ही नहीं था, हम तो बंद कमरों में और ही अपने ऊपर कपड़े डाल के बैठे होते हैं ना। आप यकीन करें ये सुबह का उठना, वैस गदउ तमिन अहली का, अल्लाह ने नबी का ये अमल कुरान में पेश कर दिया कि जब तू सुबह सवेरे अपने घर वालों को छोड़ के निकल पड़ा मेरे रास्ते में। ये इल्म की महफिल, अगर आप इस शहर में इस तरह की इल्म की महफिलें गली गली में सजा सके ना, कि सुबह जैसे आपके बच्चे स्कूलों के लिए भाग रहे हैं, जैसे आपके हस्बैंड्स निकलते हैं, आपके शहर में रहने वाली हर मुसलमान औरत जो घर में बैठी हुई है, कम से कम चलें, जो जॉब्स पे जा रहे हैं, जो काम करें उनको भी सेकंड लेवल पे करें, आप घर बैठी खवातीन अगर रोज सुबह उठ के इसी तरह अल्लाह के घरों में आकर 1 साल कुरान पढ़ लें। मैं बड़ी बात नहीं कहती लेकिन इन अल्लाह ला युगैरु वाली बात आप पे पूरी आ जाएगी, आपकी हालत बदलती जाएगी, इस मुल्क में आपका नसीब बदलता जाएगा, इस मुल्क के कानून आपके मुवाफिक होंगे, ये मुल्क वाले आपको थ्रेट नहीं करेंगे, उनको पता है अब जाग गए हैं। वो कहते हैं ना कि जब मुसलमान सुबह उठ के फजर पे निकल पड़े अगर सारे, तो गोरे डर जाएं कि उठ अब खबर कर लो क्योंकि मुसलमान जाग गए हैं। तो वेक अप मुस्लिम, आज की ये कॉल है। इसके अलावा सेमिनार, सिंपोजियम, बड़े बड़े मुनाजरे, मुबाहले, यूएनओ की तकरीरें, मीडिया की स्पीचेस, सब बेकार है। इन अल्लाह ला युगैरु मा बिकौमिन, अल्लाह का यूनिवर्सल ट्रूथ है। रवायत भी सामने आ गई है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मैंने अपनी याददाश्त से बोला था, सूरत रात की आयत नंबर 11 है, इन अल्लाह ला युगैरु मा बिकौमिन हत्ता युगैरु मा बिअन्फुसिहिम व इज़ा अराद अल्लाह बिकौमिन। जरा इसे एक जुमले पे गौर कीजिएगा जो आप पढ़ रही हूँ, व इज़ा अराद अल्लाह बिकौमिन सूअन फला मरद्द लहू व मा लहुम मिन दूनिही मिन वाल। यकीन करें आज के मुसलमान के खून से ये आयत लिखने वाली है, अगर हमें समझ आ जाए, एक एक लफ्ज के अंदर से आंसू टपक रहे हैं, जो आज उम्मत की हालत है। क्या तर्जुमा है इसका? बेशक अल्लाह ताला किसी कौम की हालत नहीं बदलते यहाँ तक कि वह खुद अपनी हालत ना बदल डाले, और जब अल्लाह किसी कौम के साथ इसकी अपनी हालत खुद खराबी की जानिब बदलने के जुर्म में मुसीबत का इरादा कर ले, यानी उनको पकड़ लें, उन पर सख्ती कर दें, तो वो किसी के टाले नहीं डल सकती, और अल्लाह ताला के अलावा इनका कोई कारसाज नहीं। आज कोशिशों का कोई नतीजा निकलता दिखता? उठती हैं बड़ी बड़ी शख्सियात, उठते हैं साहिबे दर्द, उठते हैं उम्मत की हालत बदलने वाले, लेकिन फिर बैठ जाते हैं। इमाम काबा अपना काम कर रहे हैं, वो काबा में खड़े होकर रो रो के दुआएं कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा असलिह शबाब अल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा असलिह निसाल मोमिनीन, सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन हालत क्यों नहीं बदल रही? क्योंकि अल्लाह ने कहा कि फला मरद्दा लो, जैसे आप कहते हैं ना कि गुस्सा आ गया पीछे हो जाओ मेरे आगे से, तो अल्लाह कहते हैं ये मेरे ही टाले टलनी है। बाज़ दफ़ा मेन स्विच किसी के हाथ में होता है, जब तक वो उसको ऑन ऑफ ना करे घर की बिजली नहीं आती। याद रखिए, अल्लाह ताला की पकड़ के अंदर आई हुई कौमें अपनी जाती कोशिशों और तफक्कुरात और सोचों से नहीं बदलती, उसके लिए फिर अल्लाह का पसंदीदा तरीका ही इख्तियार करना पड़ेगा, और वो क्या है? तरकल मासी, गुनाहों को छोड़ना। एक शायर के अशार कुछ इन्होंने नोट किए हैं, वाई इज़ा कुन तफी नेमतिन फर आहा, उर्दू में सुनिए, बड़े खूबसूरत अशार है। शायर कहते हैं कि जब तुम किसी नेमत में हो तो इसकी खूब देखभाल करो। सोचिए जरा, जैसे गाड़ी होती है तो हर वक्त उसको साफ करते, सजाते, धुराते, घर की नेमतों को करते हैं ना, यहाँ जरा सी देखभाल दूसरी है, क्योंकि बिलाशुबा गुनाह नेमतों को ख़त्म कर देते हैं। बंदों के रब ताला की फरमाबरदारी से उस नेमत को हर तरफ से घेर लो, क्योंकि बंदों के रब बहुत जल्द सजा देने वाले हैं। क्या समझ आया? के गुनाहों से नेमतों को ख़त्म ना करो, नेमतों को पकड़ लो किस चीज़ के साथ? अल्लाह की फरमाबरदारी से। तो 100 बातों की एक बात, जितना तुम अल्लाह की मानोगे अल्लाह तुम्हारी मानेगा, ये जुमला लिख लें। अल्लाह को कोई मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन ये अल्लाह की सुन्नत है, उसने खुद अपने ऊपर रख ली कि हल जजा उल एहसान ही इल्ला उल एहसान, तुम अच्छे काम करो मैं क्यों बुरा करूं। देखिए, आप अच्छे बच्चे को कभी डांटती हैं? आपका कोई बच्चा गलत काम नहीं करता, आपकी बात मानता है, तो आप क्या उसको डांटेंगी पकड़ेंगी? बल्कि अगर कभी वो किसी तकलीफ का शिकार हो तो आपकी सारी हमदर्दियां उसके साथ होती हैं। यही हाल अल्लाह का मोमिन के साथ होता है। मोमिन को अल्लाह आजमाइशों में डालते हैं खुद, और उसकी हालत पे अल्लाह को उस पर प्यार आ रहा होता है। ये एक अलग फलसफा है। जब किसी के दर्जे बुलंद करने के लिए आजमाइशें आती हैं तो अल्लाह ताला को उस पर प्यार आ रहा होता है साथ साथ, कि हाय मेरा बंदा तू तकलीफ में है, लेकिन मैं तुझे आला मुकाम देना चाहता हूँ, इसलिए ये काम करता हूँ। लिहाजा अल्लाह सुबहाना ताला की सुन्नत को समझने की ज़रूरत है। फिर इस आयत में हमने चूंकि ये पढ़ा था ना कि ज़मीन पर फसाद बरपा हो गया, तो इमाम इब्ने कय्यम रहमहुल्लाह इस पर कहते हैं, गुनाहों और नाफरमानियों के असरात में से एक बात यह है कि बिलाशुबा वो पानी, हवा, खेती, फलों और रिहाइश गाहों में मुख्तलिफ किस्म के फसाद पैदा कर देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने यह बात कह दी कि खुश्की और तरी पर फसाद फैल गया। क्या समझ आई है? कि बास दफा इंसानों के गुनाहों की वजह से फसलों को कीड़ा लग जाता है, अनाज खत्म हो जाता है, खड़ी फसलें तबाह होती हैं। कभी आपने नहीं सुना कि बिल्कुल आजकल बारिश की जरूरत नहीं है, लेकिन बारिश हुई खड़ी फसलें तबाह हो गई। हर साल कुछ ना कुछ तो होता है, कभी गंदम की फसल तबाह हो गई, तो कभी टमाटरों की खत्म हो गई, तो कभी आलू जल गए। ये बात है कि सिर्फ बारिश उस वक्त अल्लाह क्यों भेज रहा है? ताकि इंसानों को उनके गुनाहों की सजा दे सके। फिर इसके बाद मजीद बात कहते हैं अगले पेज पे कि अल्लाह ताला की नाफरमानियों की वजह से जमीन में नमूदार होने वाले असरात में से उस यानी जमीन में नाजिल होने वाले अजाबों में से धसाया जाना, जलजले और इसकी बरकत का मिटाया जाना है। यानी फसाद कैसे फैलता है? फसलें तबाह हुई, जलजले आ जाते हैं, और इसी तरह से आप देखिए कि बरकत छिनती है। आज क्या आप अक्सर जुमला ये नहीं सुनते पाकिस्तान में कि बरकत नहीं है, 1000 के नोट में बरकत नहीं है, 5000 का नोट तोड़वाएं तो 2-4 चीजें आती हैं, कहाँ गई बरकतें? और हदीस में आता है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में नजूल फरमाएंगे और वो इस्लाम का बेहतरीन दौर होगा कि एक अनार पूरी बस्ती को काफी होगा, एक बकरी का दूध पूरा खानदान पी जाएगा। तो ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की एक सुन्नत है कि जब लोग गुनाह करते हैं तो अल्लाह ताला फिर उनके गुनाहों की वजह से उनकी बरकत खत्म कर देता है। तो करना क्या है? अपने आप को गुनाहों से दूर रखना है। अब ये तो एक जनरल बात हो गई।